सवार है, जिस समय तू होश में आएगी तुझे अपने कर्मों पर बार बार पछताना पड़ेगा। ऐसे कहकर जामी पर गिरे अयोध्या नाथ, केवल निकला राम ही शब्दवाह के साथ। चक्रवर्ती महाराजा दशरथ जमीन पर पछाड़ खा करके गिर जाते हैं। अब मंत्री सुमंत जी ने देखा कि कल राम का राज तिलक है, राजा का कोई पता नहीं है, राजा कहाँ है। ढूंढते ढूंढते मंत्री जी को भवन में आए। क्या देखा उन्होंने? को भवन में चक्रवर्ती महाराजा दशरथ हाय राम कह करके करा रहे हैं, और रानी कैकेयी अपना भेष बिगाड़े, बुरा भेष बनाए हुए और राजा के पास बैठी हुई है। आकर के मंत्री जी ने पूछा कि हे महारानी, राजा का क्या हाल है? ये मंगल के चिन्ह मंगल को मालूम हो रहे हैं। रानी कहने लगी, मंत्री जी तुम शीघ्र ही जाकर के श्री राम को लिवा लाओ, सारा वेद खुल जाएगा। मंत्री जी गए और शीघ्र ही प्रभु श्री राम को बुला करके लाए। राम ने जब अपने पिता को देखा, कहने लगे कि हे माता, माता क्या हाल पिता का है, क्यों नहीं ये आंख खोलते हैं। अपराध हुआ क्या है मुझसे जो मुख से नहीं बोलते हैं। क्या अपराध हुआ है मुझसे जो ये नहीं बोल रहे हैं? माता के कई कहने लगी कि हे राम सुनो, हाँ अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि तुम्हारे पिता का तुम्हारे प्रति कितना प्रेम है। सुन लो ये कथा पुरानी है राम, और वरदान मुझे दो भूप दिए। अब सर पा करके वो मैंने है आज नृपति से मांग लिए। मैंने राजा से दो वरदान मांगे थे, आज समय आने पर जो है मैंने दोनों वरदान मांग लिए हैं। वो कौन से? कि पहले वरदान में सर्वस्व राज्य भरत जी का, यानी भरत का राज तिलक, और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। तुम्हारे पिता की क्या इच्छा थी? उनकी इच्छा थी पास रखे, और पर हुई नहीं वो पूरी है। वरदान दे चुके हैं मुझको, बस इसीलिए मजबूरी है। वो मुझे वरदान दे चुके हैं तुम्हारी सौगंध खा करके, अब यही मजबूरी है, अब कैसे पलट दें? तुम्हारे प्रेम में ये हराम कर करके करा रहे हैं। राम कहने लगे कि हे माता, मैं धन्य हूँ जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। और मेरे लिए बड़ा सुख होगा जब मेरा भाई भरत इस राज्य को संभालेगा। कैकेयी कहने लगी, हे राम, यदि तुम्हें स्वीकार है तो तुम शीघ्र ही बन जाने की तैयारी करो, और तुम चाहे लाख प्रयत्न करो, लेकिन राजा की उदासी दूर नहीं हो सकती, और इसका भी ध्यान रहे तुमको कर्तव्य जो तुमने पाला है। वनवास राजगद्दी की शुभ लग्न में होने वाला है, ये भी तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि तुम्हें राजतिलक होने के लिए था, लेकिन अब तुम्हें वनवास हो रहा है। क्या प्रभु श्री राम जी अपनी माता कौशल्या जी के पास जाते हुए हैं, और इधर सीता को मालूम हुआ कि हमारे पति देव को 14 वर्ष का वनवास दिया गया है, फौरन ही अपनी माता यानी सासू कौशल्या जी के पास आती हुई है और कहती है कि हे माता, मैंने सुना है कि मेरे पति देव के लिए 14 वर्ष का वनवास दिया गया है। दरबार आपके मैं माता दासी की यही प्रार्थना है, जाऊंगी साथ टहलनी मन से बाही धर्म सार्थना है। हे माता, मैं भी अपने पति देव के साथ उनकी सेवा करने के लिए जाऊंगी। जब सीता के मुख से कौशल्या जी ने सुना राम को 14 वर्ष का वनवास, हाय हाय कह करके और जमीन पर पछाड़ खा करके गिर जाती है। इतने में प्रभु श्री रामचंद्र जी वहाँ आ जाते हैं। माता पूछती है कि हे पुत्र, तेरे लिए तो राजतिलक होने को था, अब राजा 14 वर्ष का वनवास क्यों दे रहे हैं? राम कहने लगे, माता, मुझे मझली माता की आज्ञा है बन जाने की। कौशल्या जी कहने लगी कि हे पुत्र, यदि राजा ने तुम्हें आज्ञा दी है बन जाने की, तो तुम बन मत जाओ, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दो। यदि माता ने तुम्हें आज्ञा दी है तो शीघ्र ही बेटा तुम बन को जाइए। लेकिन एक बात है, कौशल्या बोली, माता ने कर तुझको आज्ञा दी बेटा, तो जा बेटा पर प्रिया सिया को संग में ले जा मेरे बेटा। हे पुत्र, तू सीता को भी साथ ले जा, क्योंकि अरे कैसे ये 14 साल यहाँ ये तेरे बिना बिताएगी लाला, कैसे ये 14 वर्ष यहाँ ये तेरे बिना बिताएगी, और रोएगी दिन भर फूट फूट और अपने प्राण गमाएगी। तेरे यहाँ तेरे बिना रुकेगी, रो रो करके अपने प्राण गंवा देगी। हे श्रोतागणों, इधर तो राम और कौशल्या जी की बातचीत हो रही है, और उधर लक्ष्मण जी ने अपनी माता से कहा जा करके कि हे माता, ये कैसा अन्याय हो रहा है, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास बजाय राजतिलक के। माता कहने लगी कि हे पुत्र, यदि तुम राम की सेवा करने के लिए जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। लक्ष्मण प्रसन्न होकर के अपनी स्त्री उर्मिला जी के पास आए, उर्मिला जी से कहा कि मैं राम की सेवा करने के लिए उनके साथ जा रहा हूँ सेवक बन करके, और मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। उर्मिला जी कहने लगी कि हे प्राणनाथ, क्या जाऊं उनके साथ, नाथ जो सेवा करने जाता है, सेवक का ऐसा धर्म नहीं, सेवक पत्नी को साथ रखे ये धर्म नहीं कहलाता है। क्या जाऊं मैं तुम्हारे साथ पतिदेव, आप सेवा करने के लिए जा रहे हैं, ये सेवक का धर्म नहीं है कि पत्नी को साथ रखे, वो सेवा क्या कर पाएगा। मैं तुम्हें आशीष दे रही हूँ, जाओ आप बड़े प्रेम से श्री राम की सेवा करना। इस प्रकार लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के पास आए और कहने लगे कि हे भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। राम कहने लगे कि हे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अभी ननिहाल में है और पिताजी की हालत ठीक नहीं है, तुम भी मेरे साथ चलोगे तो यहाँ कौन रह जाएगा। सुमित्रा जी आ गई, कहने लगी नहीं राम, मैंने आज्ञा दी है लक्ष्मण को तुम्हारे साथ जाने की। विवश होकर के माता सुमित्रा की आज्ञा स्वीकार करनी पड़ी। तीनों का जब हो रहा बन के हेत बयान, राजा दशरथ के कानों में आवाज आ रही है, क्या अब मात पिता आज्ञा दीजे बन जाऊं जो देवर सो को। मिलूंगा लेकिन अयोध्यावासी नहीं मान रहे हैं। चलते चलते रथ तमसा के किनारे पहुंचा, वहां प्रथम निवास किया श्री राम ने और मंत्री सुमंत जी को समझाया कि सुमंत जी ये अयोध्यावासी सोकर के ना जग पाए जब तक ही आप रथ को आगे बढ़ा देना, नहीं तो ये पीछा नहीं छोड़ेंगे और पहियों के चिन्ह भी मिटाते चलना। अयोध्यावासी सोते ही रहे, सुमंत जी ने रथ आगे बढ़ा दिया और जब अयोध्यावासी जगे उन्होंने देखा ना वहाँ रथ है ना सुमंत जी है ना राम और लक्ष्मण सीता है, तो हाय राम कहकर के विवश होकर के अयोध्यापुरी वापस आ जाते हैं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा के किनारे पहुंचे, वहाँ उन्होंने सुमंत जी को समझा बुझा करके सुमंत जी अब आप वापस हो जाइए और पिताजी को धीरज बनाना, उन्हें ऐसी ऐसी शिक्षाएं देना ताकि उन्हें मेरी याद ना आए और मेरे वन आने का कोई उन्हें दुख ना हो, माताओं के लिए भी धीरज बनाना, ऐसे समझा बुझा करके उन्होंने और सुमंत जी को वापस किया। अपने आप गंगा के किनारे आ गए और केवट से कहने लगे कि हे मल्लाह जल्दी तू नवैया ला दे। अरे तो मांगी नावना के बटवाना, अरे कहे तुम्हार मरम में जाना। बोले मुझे गंगा के पल्ले पार जाना है। केवट कहने लगा, हे प्रभु नवैया तो ला दूंगा लेकिन आपको बैठा लूंगा नहीं, आपके मर्म को मैं जानता हूँ, पहले आपके पैर धोऊंगा फिर आपको नवैया में बैठा दूंगा। कठौआ ला करके केवट ने प्रभु श्री राम जी के चरण धोए, चरणामृत लिया और फिर उनको नवैया पर बैठा ला। जब पल्ले पार जा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी उतरे नवैया से तो उनको कुछ दुख हुआ, क्या सकुचाने लगे केवट को देख करके, क्यों? उस समय देख कर केवट को मन में सकुचाए रघुराई, सोचने लगे कि जिसने हमको गंगा के पार उतारा है उसे मैं उतराई दे क्या दूं। उस समय देख कर केवट को मन में सकुचाए रघुराई, जिसने हम सबको पार किया क्या दूं मैं उसको उतराई। जिसने हम तीनों को गंगा के पार उतारा है उसे मैं उतराई में क्या दूं, क्योंकि वनवासी का वेश बना हुआ था, पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन और किस कारण नाथ उदास हुए सीता सब बातें जान गई। भाई पति के उन गुप्त रहे सो को पतिव्रता तुरंत पहचान गई। सीता सोचने लगी कि नाथ इसीलिए उदास हुए हैं क्योंकि केवट के लिए उतराई में देने को कुछ नहीं है। अपने करके मुद्रिका उतार करके श्री राम को दी और कहा, हे नाथ केवट को उतराई में यह मुद्रिका दे दीजिए। जब श्री राम मुद्रिका देने लगे तो केवट कहने लगा कि हे प्रभु उतराई तो मैं उसी समय अपनी ले चुका हूँ जिस समय मैंने आपके चरण धोए थे। हाँ यदि आप मुझे उतराई देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ये उतराई दें कि जिस समय आप 14 वर्ष बाद वन से वापस होकर के आए तो प्रभु मेरी ही नवैया पर उतर करके जाएं। देखो कितना प्रेम था प्रभु श्री राम से केवट को। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और आगे बढ़े। और ये श्रोतागणों अब आगे की कथा सुनो। जब मंत्री सुमंत जी पहुंचे अयोध्यापुरी में, रथ को दरवाजे पर रोक करके राजा दशरथ के पास पहुंचे। राजा दशरथ पहले की ही तरह हाय राम कह करके और करहा रहे हैं, उनकी हालत बिगड़ती ही चली जा रही है। सुमंत जी आए, सुमंत जी को देख करके राजा ने कहा, मंत्री जी राम कहाँ है, राम को तुम कहाँ छोड़ आए, राम के बिना मैं कैसे रहूं। सुमंत जी ने कहा, राजन मैं अपने हृदय में पत्थर रख करके वापस चला आया, राम जिस समय नवैया पर बैठे और उनको मैं देखता का देखता ही रह गया। राजन श्री राम ने कह दिया है कि पिताजी से कह देना कि मेरी तरफ से कोई चिंता ना करें और माताओं के लिए भी धीरज बंधाना। जैसे ही मंत्री सुमंत जी के वचन सुने राजा ने, राजा दशरथ हाय राम कह करके कराने लगे और कहने लगे कि मैं बचूंगा नहीं, मेरे प्राण जाने ही वाले हैं। उसी समय पर रानी कौशल्या जी आती हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी का चित्र दिखा देती हैं दशरथ के लिए। दशरथ कहते हैं, रानी मैं बचूंगा कैसे, मेरा तो अंतिम समय है। सुनो मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुना रहा हूँ। रानी एक समय की बात है, मैं घोड़े पर बैठ करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, एक हिरण का पीछा करते करते मैं काफी दूर निकल गया, हिरण भाग गया मेरा शिकार छूट गया, मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया सस्ताने लगा। अचानक में मैंने क्या सुना, मेरे कानों में आवाज आई कि सरयू में जल उछल रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है कि सरयू में कोई भागा हुआ चला जा रहा है। मैंने समझा रानी कि वही मेरा खोया हुआ शिकार हिरण सरयू में कूद गया है। मैंने उसी निशाने पर यानी उसी आवाज पर जो है अपना तीर छोड़ दिया। और समझा था मैंने आ मिला मुझे वो खोया हुआ शिकार मेरा, और फिर क्या था मारा तान मैंने, फिर क्या था मारा तान मैंने, रखा था तीर तैयार मेरा। और जिस समय वो तीर लगा जाके, तीर के लगते ही आवाज आई कि हाय माता पिता, हाय माता पिता, ये मेरे किसने तीर मार दिया है, कौन हो तुम। जैसे ही मेरे ये आवाज आई कानों में रानी, मैं फौरन ही वहां पहुंचा, घायल के शरीर से मैंने अपने तीर को खींचा, और तीर खींचते ही खून का फब्बारा छूट उठा। रानी मैंने कहा भाई मैं राजा दशरथ हूँ, मैंने तुम्हारे धोखे से तीर मार दिया है, प्राणों का घातक मैं ही हूँ, पहले मेरा प्रणाम ले लीजिए। रानी वो घायल कहने लगा राजा दशरथ देखो मेरी अब मरे हुओं ने गिनती है, कुछ मरने वाले की विनती है। ये राजन मेरा नाम श्रवण कुमार है, मैं अपने माता पिता के लिए तीर्थ करवाने के लिए गया था, यहाँ सरयू के पास आया, उनको बड़े जोर की प्यास लगी थी, मेरे माता पिता अंधे हैं, कांवरी पेड़ पर टांग करके मैं उन्हें पानी लेने के लिए आया था, राजन तुमने मेरे तीर मार दिया, मेरे तो प्राण जाने ही वाला है, लेकिन मैं तुमसे थोड़ी विनती कर रहा हूँ क्या कि हे राजन मेरे माता पिता को आप जाकर के पानी पिला दें, वो प्यासे ना मरे। इतना कहकर के घायल ने अपने प्राण छोड़ दिए और मैं खड़ा देखता का देखता रह गया। लोटे में जल लेकर के मैं जब पहुंचा श्रवण कुमार के माता पिता के पास, मैंने सोचा कि यदि मैं बोलूंगा तो ये मुझे पहचान लेंगे, पानी नहीं पिएंगे। जब मैं उनके करीब पहुंच चुका, मेरे पैरों की आहट से उन्होंने पहचान लिया कि शायद मेरा पुत्र आ रहा है जल लेकर के, वो कहने लगे और बोले तू कब का गया लाल लेकिन जल लेकर अब आया है, हे मेरे पुत्र तू कब का गया हुआ था लेकिन पानी लेकर अब आया है, बोले तू कब का गया श्रवण लेकिन तू जल अब लाया है, कैसे है तू चुपचाप खड़ा, क्या कष्ट तूने कुछ पाया है। परेशानी होगी पुत्र, हमें ऐसा मालूम होता तो हम प्यासे रह लेते लेकिन तुझे पानी लेने नहीं भेजते। उसी समय मैं सोच रहा था कि यदि मैं बोलूंगा तो ये मुझे पहचान लेंगे, आखिर में जो है वो कहने लगे कि तुम कौन हो, बोल क्यों नहीं रहे हो, मेरे पुत्र नहीं हो। रानी फिर मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा पुत्र श्रवण कुमार मैंने धोखे से मार दिया है, हिरण के धोखे में तीर लगा है उसके, मुझे क्षमा कीजिए मैं राजा दशरथ हूँ। इतनी कहते बात मैं कांपा सकल शरीर, शब्द मेरे जाकर लगे अंधों के उर तीर। जैसे ही मैंने ये कहा उन्होंने सुना कि मेरा पुत्र मारा गया है, हाय पुत्र कहकर के चिल्लाने लगे और कहने लगे कि हे दशरथ तू मुझे पानी पिलाने आया है, मेरा कलेजा जलाने के लिए आया है तू। सुन राजन, और यदि देता ही है जल हमको तो अंजल में अपनी जल ले, और अंधा दे श्राप यदि कल ले तू भी निज कर्मों का फल ले। तो अपनी उंगली में जल ले, और मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ कि आज जिस भांति हम अपने पुत्र के शोक में मर रहे हैं राजा दशरथ, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के शोक में ही मरोगे। हे रानी कौशल्या, ऐसा कहकर के श्रवण कुमार के पिता ने अपने प्राण छोड़ दिए, और इतने में श्रवण की माता कहने लगी कि सब कर्म विहीन पड़ा और मेरे पति का हाय देव अभागे हम निकले, और तेरे भी पुत्र न हो घर पर जब राजन तेरा दम निकले। तेरे भी पुत्र न हो घर पर जब राजन तेरा दम निकले। हे राजा दशरथ, जिस प्रकार मेरे पति की लाश पड़ी हुई है और मेरा पुत्र नहीं है, उसी प्रकार तेरी भी लाश पड़ी पड़ी भिनकेगी और तेरे भी पुत्र उस दिन पर घर नहीं होंगे। हे रानी कौशल्या, मैं बचूंगा कैसे, मेरे लिए तो ये शाप दिया हुआ था। और ऐसा कहकर के हाय राम कहकर के कराते हुए और चक्रवर्ती राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। महलों में खबर हुई तो सभी रानियां विलाप करने लगी, राम राम कहते हुए सुरपुर को अवदेश, रानी सब रोने लगी तब करी करी विधवा वेश। सब रानियां विलाप करने लगी और महलों में कुहराम मचा हुआ है। हाँ तो श्रोता गणो, हाँ प्राण नाथ, हाँ प्राण सुर महलों में स्वर अपार हुआ, स्त्री बच्चे सब रोते थे पुर भर में हाहाकार हुआ। तो नृप दशरथ के मारण का सुन संवाद अरेश, उसी समय पर आ गए महलन गुरु वशिष्ठ। उसी समय पर गुरु वशिष्ठ जी आ जाते हैं और रानियों के लिए धीरज बनाते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।